समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार।
यस, हेलो जया, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। I'm sure you are, in fact, I must say, we all are still basking in the glory of winning the T20 World Cup trophy yesterday. Bumrah's stunning bowling sealed India's record-breaking win at home after Samson and Abhishek's batting fireworks. India have made history by becoming the first team to win the T20 World Cup at home, defeating New Zealand by 96 runs in the final at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Surya Kumar Yadav's team buried the ghosts of the past and raced to a record-breaking third T20 World Cup title in front of a sell-out crowd at the world's largest cricket stadium on Sunday. What an evening it was, isn't it, Jaya?
Bilkul.
Getting back to work after all these excitement, we are here with you with all that's going on around us in our daily afternoon magazine, Parikrama. So shall we begin with the news headlines, Jaya?
बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिर के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।
इंडिया कॉल्स फॉर डीएस्केलेटिंग टेंशन्स इन वेस्ट एशिया थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी।
पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज, अमरीका और इसराइल के ईरान के भूमिगत ढांचे पर निशाना बनाया और ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल दागे।
Oil prices crosses $100 per barrel mark for the first time in 4 years. Sensex crashes over 1700 points. Nifty also come down by over 500 points.
और हैदराबाद में FIH विश्व कप महिला हॉकी क्वालिफायर मैच में आज भारत का सामना स्कॉटलैंड से।
And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about assistance of artificial intelligence in film industry. Jaya, when lights dim in a theatre, the screen comes alive. And for a few moments, an entire world unfolds before eyes. Cinema has always been magical. But what happens when technology begins to shape that magic itself?
बिल्कुल अनुजा, और हाल ही में जब नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें फिल्म निर्माता, लेखक, प्रौद्योगिकीविद और नीति निर्माता सिनेमा के भविष्य से जुड़े एक दिलचस्प सवाल पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे कि यदि मशीनें स्क्रिप्ट लिख सकें या विजुअल्स फ्रेम डिजाइन कर सके और यहां तक कि अब अनुमान भी लगा सकती है कि दर्शकों को क्या पसंद आएगा, तो हमारे श्रोता ये सोच रहे होंगे कि फिर कहानी कहने में किसी मनुष्य की क्या ही विशेषता रह जाती होगी।
इज सिनेमा ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी जया, और इज इट अबाउट इमोशंस, मेमोरीज एंड लिव्ड एक्सपीरियंसेस? बिकॉज एवरी ग्रेट फिल्म कैरीज समथिंग डीपली ह्यूमन विद इन इट।
बिल्कुल। तो प्रौद्योगिकी और सिनेमा के बीच का संबंध, सिनेमा जितना ही पुराना है, सिनेमा में हर तकनीक बदलाव को कभी न कभी संदेह की निगाह से देखा गया है।
एब्सोल्युटली, व्हेन साउंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फिल्म्स, सम फियर्ड इट वुड एंड द आर्टिस्ट्री ऑफ साइलेंट सिनेमा। व्हेन कलर फिल्म्स अपीयर्ड, क्रिटिक्स कॉल्ड देम अननेसेसरी स्पेक्टेकल।
और जब डिजिटल कैमरा आए तो लोगों ने कहा कि सिनेमा अपनी प्रामाणिकता खो देगा, और जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आए तो कई लोगों ने भविष्यवाणी की कि थिएटर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे।
Yet something remarkable happened. Cinema adapted, storytelling evolved, and audiences experienced richer stories than ever before.
और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस यात्रा में अगला बड़ा कदम है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुपचाप फिल्म निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रवेश कर रही है, कहानीकारों को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि उनका समर्थन करने के लिए।
Just think about the preparation that happens before a film is even shot. Scheduling the locations, planning scenes, coordinating the actors, these tasks can take weeks.
और एआई डेटा का विश्लेषण कर इन विवरणों को बहुत तेजी से व्यवस्थित करती है. कास्टिंग प्रक्रिया भी अधिक स्मार्ट हो गई है. हजारों प्रोफाइलों को मैनुअल रूप से खोजने के बजाय अब एआई सिस्टम के से खोजा जाता है. अभिनेता डेटाबेस को स्कैन करके कुछ ही मिनटों में उपयुक्त कलाकारों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं.
एंड देन कम्स पोस्ट प्रोडक्शन, विजुअल इफेक्ट्स, कलर करेक्शन, एडिटिंग, टाइनी डिटेल्स फ्रेम बाय फ्रेम. एआई टूल्स कैन कंप्लीट दीज टेक्निकल प्रोसेसेस फार मोर एफिशिएंटली नाउ.
लेकिन अब असली सवाल तो यह है कि क्या एआई भावनाओं को महसूस कर सकता है? क्या यह बचपन की यादों को याद कर सकती है? क्या यह संस्कृति, परंपराओं और व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरणा ले सकता है? तो जवाब साफ है कि तकनीक कहानी कहने में मदद कर सकती है, लेकिन कहानी की आत्मा अभी भी मानवीय अनुभव से ही आती है.
इनफैक्ट इंडिया हैज ऑलरेडी बिगन एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड इनोवेशन. एंड अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल इज द रिक्रिएशन ऑफ द एपिक महाभारत यूजिंग एडवांस्ड एआई टूल्स.
और सार्वजनिक प्रसारकों और रचनात्मक स्टूडियो के बीच सहयोग के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बड़े पैमाने पर युद्ध के दृश्यों और कहानी कहने को बेहतर बनाने में मदद की है.
येट द हार्ट ऑफ द नैरेटिव रिमेन्ड अनटच्ड. द टाइमलेस एपिक स्टेड रूटेड इन इट्स कल्चरल एसेंस, व्हाइल टेक्नोलॉजी हेल्प प्रेजेंट इट इन अ वे दैट कनेक्ट्स विद मॉडर्न ऑडियंसेस. दिस इज वेयर टेक्नोलॉजी बिकम्स पावरफुल. इट डज नॉट इरेज ट्रेडिशन, इट amplifies it.
और अब आइए एक व्यापक परिप्रेक्ष्य पर नजर डालते हैं कि भारत विश्व के सबसे बड़े फिल्म निर्माण करने वाले देशों में से एक है. तो हमारा सिनेमा दर्जनों भाषाओं में भी अपनी बात कहता है और महाद्वीपों के दर्शकों तक पहुंचता है. इतना ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बढ़ती रचनात्मक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनता जा रहा है.
In fact, technology alone is not enough. Infrastructure, skills and innovation must grow alongside it. That is exactly what India is working towards, building the ecosystem for the future.
और वहीं जिसे AVGC उद्योग कहा जाता है, यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र में भी AI तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारत में पहले ही हजारों गेम डेवलपमेंट कंपनियां और ऑनलाइन गेमर्स का एक विशाल समुदाय मौजूद है.
राइट, एंड स्टूडियोज अक्रॉस द कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स प्रोजेक्ट्स सपोर्टेड बाय अ वर्कफोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटिव प्रोफेशनल्स एंड द नेक्स्ट जनरेशन इज बीइंग प्रिपेयर्ड अर्ली.
तो जैसा कि अभी हमने कहा अनुजा कि AI मनुष्य को उसके काम से हटाने के लिए नहीं बल्कि उसकी मदद के लिए है, तो ये लोगों को ध्यान में रखना होगा कि AI उनका दुश्मन नहीं है बल्कि उनके एक फ्रेंड के रूप में आया है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हजारों स्कूलों और कॉलेजों में भी कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू किया जा रहा है ताकि छात्र कम उम्र से ही एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल स्टोरी टेलिंग का पता लगा सके.
Just think about a student in a small town learning animation today. Tomorrow, that same student could be designing characters for a global film.
और जहां कनेक्टिविटी होती है वहां प्रौद्योगिकी का विकास होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास होता है. और आज भारत में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इकोसिस्टम में से एक है. करोड़ों ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, करोड़ों स्मार्टफोन है, एक विशाल पैमाने से एक बहुत बड़ा डिजिटल उपयोगकर्ता आधार बनता है.
And within this environment, creators from large studios to independent filmmakers can distribute their stories faster than ever before.
और अब एक छोटे शहर का फिल्म निर्माता अपनी फिल्म को ऑनलाइन अपलोड करके दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचता है. यही है डिजिटल बुनियादी ढांचे की शक्ति.
Yes, Jaya, and another exciting part of this story is India's startup ecosystem. Creative technology startups are building tools for animation, immersive media, AI-driven localization and digital storytelling.
और इनमें से कई नवाचारों को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान प्रदर्शित किया गया, जहां उभरती कंपनियों ने दिखाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रचनात्मक उद्योगों का समर्थन कैसे कर सकता है.
दिस सर्टेनली शोज दैट इनोवेशन इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू लार्ज स्टूडियोज. यंग एंटरप्रेन्योर्स आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टोरी टेलिंग नाउडेज.
फिर भी इस सारी तकनीक के बीच एक सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चित्र बना सकती है, संगीत रच सकता है, हजारों लिपियों का विश्लेषण कर सकता है.
बट सिनेमा हैज नेवर बीन अबाउट व्हाट एल्गोरिथम प्रेडिक्ट्स. सिनेमा इज अबाउट करेज, अ डायरेक्टर चूजिंग एन एंडिंग दैट ब्रेक्स एक्सपेक्टेशंस एन एक्टर एक्सप्रेसिंग इमोशन विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड।
और एक लेखक अपनी निजी यादों को कहानियों में ढालता है जो लाखों लोगों के दिलों को छू जाती है। मशीनें अतीत के पैटर्न का विश्लेषण कर सकती है लेकिन कलाकार भविष्य के लिए संभावनाएं रचते हैं। इसलिए बहस तकनीक को रोकने के बारे में नहीं है, असली सवाल कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि कहानीकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्गदर्शन कैसे करेंगे, फिल्म निर्माता यह सुनिश्चित कैसे करेंगे कि तकनीक कहानियों को पूर्वानुमानित करने के बजाय रचनात्मकता को मजबूत करे।
Because when the lights dim in a theater, when the first frame appears, and when audiences lean forward, waiting to be moved by the movie which is being made.
तो असल में जो मायने रखता है वो गणना नहीं है, यानी कि डेटा नहीं है, मायने रखता है जुड़ाव.
And that connection is deeply human.
और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि उनके पास क्या कुछ खास है।
एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट्स वी ऑल टेक यू टू द इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल ऑफ दिस ईयर व्हिच इज थीम्ड ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी व्हिच बिगन ऑन सैटरडे एट ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स एट पैंगयोंग डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम। द फेस्टिवल हैज brought together orchids growers, farmers and enthusiasts from across the country to showcase diverse orchids varieties and products. A report.
Minister of Sports and Youth Affairs, Government of Sikkim, Raju Basnet, inaugurated the festival and also inspected the Orchid Show Cum competition. In his inaugural address, ICAR NRCO Director Dr. S.P. Dash expressed his happiness over the participation of orchid growers and enthusiasts from across the country. Dash said the festival has grown into a grand event since last year and appreciated the support extended by Government of Sikkim, private stakeholders and farmers. Raju Basnet appreciated the initiative taken by ICAR NRCO in bringing flower growers together and organizing the event for the second time. Basnet noted that many people are gradually moving away from farming and said such events could help revive interest in agriculture. He urged the center and research institutions to explore ways to promote mass cultivation of Cymbidium orchids, which could significantly benefit local farmers. On the first day of the festival, a memorandum of understanding was signed between Smart Organic Plants Private Limited and ICAR NRCO Pakyong. Planting materials were also distributed to farmers. The occasion also witnessed the ceremonial release of 6 orchid hybrids developed by ICAR NRCO and 4 technical bulletins published by the institution. Farmers from Sikkim, Mirik, Darjeeling, Sonada, Kalimpong and Maharashtra showcased their orchid varieties and products at the festival. With Manush Pratim Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashvani News Gang Talk for Parikrama.
और अब चलते हैं पंजाब, जहां मादक पदार्थों के व्यापार की वित्तीय रीढ़ को तोड़ने के लिए किए गए निर्णायक प्रयास के तहत राज्य पुलिस ने पिछले 2 वर्षों में ड्रग तस्करों से जुड़ी अवैध रूप से अर्जित 600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। ब्यूरो के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
This strategy of freezing properties of drug traffickers reflects a significant shift in enforcement priorities from merely arresting offenders and seizing narcotics to systematically targeting the illicit wealth generated through drug trafficking. Punjab police investigations now routinely track the proceeds of drug crime through properties, bank accounts, shell companies, Benami holdings and luxury assets. Residential houses, commercial establishments, agricultural land and high-value vehicles which are acquired illegally have also been identified and freezed under relevant provisions of the law of the land. The crackdown forms an important part of the Punjab government's Youth Nashya Virudh campaign, which aims to combat the narcotics menace through coordinated enforcement and public participation, prevention and rehabilitation measures. However, more needs to be done to make the border state drugs-free. For Parikrama, this is Rajesh Bali, Akashvani News, Jalandhar.
And now we take you to Tamil Nadu, where the Tamil Nadu government has constituted an expert committee to frame, draft a pet and community dog bylaws to regulate or ban aggressive and dangerous dog breeds in the interest of public safety. The state government has issued orders forming the committee, which has been asked to submit its recommendations at the earliest. We have more from our correspondent.
the central government identifying certain dog breeds as ferocious and aggressive, the Corporation Commissioner Kumara Gurubaran requested the state government to issue public orders or guidelines banning the possession of such breeds as pets and to stop the renewal of licenses for these categories of dogs within the jurisdiction of the Greater Chennai Corporation. The committee may examine ways to regulate and ban aggressive and dangerous dog breeds to ensure the safety of the public, society and other living beings. The panel could also review existing regulations governing such breeds and draft standard operating procedures for their ownership, handling and enforcement. The expert committee will be headed by the Directorate of Municipal Administration as its chairperson. The Chief Executive Officer of the Tamil Nadu Animal Welfare Board will serve as the member secretary and convener along with six other members. Joy, Akashwani, reporting for Parikrama from Chennai.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो जैसा कि अनुजा ने शुरुआत में ही बात की कि कल T20 वर्ल्ड कप जीतकर भारत ने फिर से इतिहास को दोहराया और नया इतिहास भी रचा, तो T20 वर्ल्ड कप का कारवां तो खत्म हो गया भारत की जीत के साथ, लेकिन अब भारत हॉकी महिला टीम कुछ नया करने जाएंगी। महिला हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने के लिए आज उनका हैदराबाद में क्वालिफाइंग मुकाबला है। पूल बी के दूसरे मैच में आज भारत का सामना शाम 7:30 बजे स्कॉटलैंड से होगा। हैदराबाद में होने वाला यह टूर्नामेंट महिला हॉकी विश्व कप के दो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में से पहला है। दूसरा टूर्नामेंट चिली के सेंटियागो में चल रहा है। दोनों टूर्नामेंट की प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम इस वर्ष बेल्जियम और नीदरलैंड्स में संयुक्त रूप से होने वाले महिला हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगी।
And now in business news, benchmark domestic equity indices closed more than 1.5% lower today. The Sensex tanked 1,353 points to close at 77,566, while the Nifty dropped 422 points to settle at 24,028.
और अब हम बात करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की और उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
वी रिमेम्बर फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर झवेर चंद कालिदास मेघाणी, हु डाइड ऑन 9th मार्च 1947, रिफर्ड टू एज राष्ट्रीय शायर और पोएट ऑफ द पीपल बाय महात्मा गांधी। मेघाणी वॉज ऑल्सो प्रेज्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु यूज्ड टू से दैट हिज was a voice full of courage.
Meghani, who called himself Paharnu Balak, the son of the mountains, was born on August 29, 1896, on the outskirts of a town called Chotila, in what was then known as the Kathiawar Agency. A pioneering folklorist, Jhavir Chand used Gujarati folklores to rouse the masses against the might of the British Empire, while also silently saving the dying voices of the country's folk traditions.
He wrote Sindhu Dho, a collection of 15 patriotic songs in 1930, which commemorated the Salt and Dholera Satyagrahas. The British government banned the book and confiscated all existing copies. However, the revolutionary spirit of the people ensured that his voice was not suppressed, and the copies of the book were circulated underground. The British summoned Meghani to a special court on April 28, 1930, implicating him with false charges. He was sentenced to 2 years imprisonment in Sabarmati jail, but was released in a year after the Gandhi-Irwin Pact.
On the eve of his journey to England for the second roundtable conference, Gandhiji was enveloped in gloom as he knew that the British were unlikely to accept his demand for complete independence. Meghani hurriedly wrote a poem for him titled Chelo Katoro, The Last Cup of Poison, in which he requested Bapu to drink this last cup of poison for the nation. The poem was composed in the final hour and rushed to Gandhiji just before his departure. On reading it, Gandhiji immediately said, "Meghani seems to have entered my soul and fully captured my state of mind in this poem." It was then that he spontaneously gave him the title of Rashtriya Shayar.
The revolutionary poet was constantly engaged with the freedom struggle. However, he was also increasingly perturbed by the rising communal violence across the country. and it was perhaps this distress that caused a heart attack to claim his life on March 9, 1947.
अब हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में प्रसिद्ध देविका रानी को। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे 1930 और 1940 के दशक की एक दिग्गज अभिनेत्री और निर्माता थी, जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
Of course, she was known as the first lady of Indian cinema who co-founded Bombay Talkies, starring many of its early films and popularizing elegance on screen while challenging norms with groundbreaking scenes like the first initial things in the Indian cinema. She was also the grandniece of Rabindranath Tagore. And when she founded the Bombay Talkies along with her husband, she sang and danced in 9 melodramatic romances. And the studio produced several successful films over the next 5 to 6 years in that time of period. And Devika Rani played the lead role in many of them. Bombay Talkies was one of the best equipped film studios in the country, where it served as a launchpad to many of the actors later who became stars like Dilip Kumar, Leela Chitnis, Madhubala and Raj Kapoor. So we have a song in her voice taken out for you. Of course, the London-educated Bengali actress dominated the Indian cinema in the 1930s, and she was also awarded the Padma Shri and the Soviet Land Nehru Award in 1990.
और अनुजा देविका ने 10 वर्ष के अपने फिल्मी करियर में कुल 15 फिल्मों में ही काम किया था, लेकिन खास बात यह है कि उनकी हर फिल्म को क्लासिक का दर्जा मिला। 1969 में जब प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के की शुरुआत हुई थी तो वे इसकी पहली प्राप्तकर्ता बनी।
Right, and the next personality we pay tribute to is K. Asif. The film that Asif is mostly closely identified with is none other than the historic Mughal-e-Azam. However, there was more to Asif Kareem, who is known as K. Asif, than the monumental epic on the Mughal dynasty. Asif, in fact, began his career with a film called Phool in 1945, which starred Prithviraj Kapoor, who later played the Emperor Akbar in Mughal-e-Azam. K. Asif donned the hats of a film producer and screenwriter other than being a director. Despite his fame, he was known for his simplistic lifestyle. The fact that the K. Asif achieved legendary status despite directing just 4 and producing just 3 films speaks volumes of the man's exceptional talent. So we have selected a dialogue from his famous classic movie Mughal-e-Azam and followed by a song from his movie.
Hamara hukm hai Saleem ko jang ke morche par Dakkan rawana kar diya jaye. Maidan-e-jang mein talwar sipahi ke haath mein di jati hai, mayus aashiq ke haath mein nahi. Ek kaneez ke ishq mein sar takra takra kar jeene se maidan-e-jang ki maut behtar hai.
Hamara Saleem jang par nahi jayega.
Hamara hukm अंधी ममता का मोहताज नहीं
प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या प्यार किया कोई चोरी नहीं की प्यार किया
What a beautiful melodious song, and the song from K. Asif's magnum opus Mughal-e-Azam won the National Film Award for Best Feature Film in Hindi, the President's Silver Medal at the 8th National Film Awards. And next, we also pay tribute to Joy Mukherjee, the Indian actor and director who was referred to as the heartthrob in his time, as he was famously known for his romantic roles in the 60s and the 70s, who debuted in Love in Shimla. He was the son of the producer Sashadhar Mukherjee, who was a key pillar of the Bombay Talkies we talked about during the Devika Rani thing. And he starred in hits like Love in Tokyo, Ziddi and Phir Wahi Dil Laya Hoon. Let's hear a song from his movie.
करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए बहुत शुक्रिया
तो हिंदी फिल्मों के आकर्षक अभिनेताओं में से एक थे जॉय मुखर्जी। वे उन अभिनेताओं में से भी एक थे जिन्होंने भारतीय दर्शकों के दिलों में बहुत लंबे समय तक राज किया है। और इसी के साथ हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म जगत के कैलेंडर के नाम से मशहूर अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, कॉमेडियन और पटकथा लेखक सतीश कौशिक को। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो सुनते हैं कैलेंडर फिल्म से ये गीत।
मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के। मेरा
ये गाना उनके फिल्म मिस्टर इंडिया से है जो 1987 में आया था।
एंड नाउ रिमेम्बरिंग द मैन हु बिकेम इंडियन म्यूजिक्स ग्लोबल एम्बेसडर ऑन तबला, दैट इज जाकिर हुसैन, द लेजेंडरी तबला वर्चुओसो एंड ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हु डाइड एट द एज ऑफ 73, लीविंग बिहाइंड अ टाइमलेस रिदमिक लेगेसी दैट इंस्पायर्स जनरेशंस। अ चाइल्ड प्रोडिजी, ही कोलैबोरेटेड विद इंडियन क्लासिकल आइकन्स लाइक रविशंकर, अली अकबर खान एंड शिव कुमार शर्मा एंड ग्लोबल म्यूजिशियंस लाइक जॉन मैकलॉलिन एंड जॉर्ज हैरिसन। हुसैन्स जर्नी फ्रॉम अ चाइल्ड प्रोडिजी टू एन इंटरनेशनल celebrated percussionist was a master class in balancing tradition and innovation. Hussain's life revolved around rhythm from the very beginning. The sound of the tabla was his first language, his earliest words. In 1973, he co-founded Shakti with guitarist John McLaughlin, a group that fused Indian classical music with jazz and Western traditions, creating a new global sound.
Aur ve शास्त्रीय भारतीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। 1988 में उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला। 2002 में संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा उन्हें 1992 और 2009 में संगीत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया।
सो व्हाई नॉट लिसन टू वन ऑफ हिज तबला रेंडिशन अजया।
बिल्कुल। आज ही भारतीय सिनेमा की एक प्रख्यात अभिनेत्री उषा किरण की पुण्यतिथि है जो अपने सहज अभिनय और मनमोहक उपस्थिति के लिए जानी जाती है। उन्होंने हिंदी, मराठी और गुजराती भाषाओं में 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। तो सुनते हैं उनके एक फिल्म का ये गीत।
दिल में हमारे कौन समाया,
खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, किसने मुझे दीवाना बनाया,
खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, दिल में हमारे कौन समाया,
खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, किसने मुझे दीवाना बनाया,
खुद ही
आज अख्तरुल ईमान की पुण्यतिथि है। वे उर्दू नज्म के एक नए मानक स्थापित करने वाले अद्वितीय शायर थे। उनकी नज्में उर्दू अदब के धरोहर का अमूल्य हिस्सा है। उन्होंने उर्दू शायरी की लोकप्रिय विधा गजल से किनारा करते हुए सिर्फ नज्म को अपने काव्य अभिव्यक्ति का जरिया बनाया और एक ऐसी जबान में गुफ्तगू की जो शुरू में उर्दू शायरी से दिलचस्पी रखने वाले तगज्जुल और तरन्नुम अशना कानू के लिए खुरदरी और गैर शायराना थी।
एंड वी ऑल्सो से अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू फैज अनवर, हु इज एन इंडियन पोएट एंड लिरिसिस्ट, हु हैज रिटन सॉन्ग्स फॉर पॉपुलर मूवीज लाइक दिल है कि मानता नहीं, साजन एंड जब वी मेट एंड दबंग, एंड वी हैव सेलेक्टेड अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम हिज मूवी। लेट्स सी।
मुश्किल बड़ी में मोहब्बत ये जानता ही नहीं,
ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं।
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और अनुजा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।
नमस्कार।